ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद्भागवतम का तीसरा स्कंद और श्लोक अध्याय 25वां श्लोक संख्या 44 ये अंतिम श्लोक है। भक्ति योग की महिमा कपिल देव का उपदेश अपनी माता देवती को है। एतानां एव एतावान् एव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयस उदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनः मयि अर्पितं स्थिरम्। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनो अर्पयित्यं वत्सिरम्। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनः मयर्पितं स्थिरम्। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्।
इस संसार में
पुंसां मनुष्यों का निःश्रेयस जीवन की अंतिम सिद्धि की उदय प्राप्ति तीव्रेण तीव्र भक्ति योगेन भक्ति के अभ्यास से मन मन मई मुझ में अर्पितम लगे हुए स्थिरम स्थिर। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं, जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही है। यहां पर प्रयुक्त मनोमय अर्पितम शब्द महत्वपूर्ण का है, जिसका अर्थ है मुझमें लगे हुए मन। मनुष्य को भगवान कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण हैं। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाया, वे भगवान की ही लीलाओं का कथन करते, वे भगवान पर चढ़े हुए पुष्प तथा तुलसी को ही सुनते, वे केवल भगवान के मंदिर तक जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जीभ का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रही। सर्वप्रथम मन को भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। अतः मन के लगे रहने पर सारी इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है, वे सदैव चलायमान रहती है। यही हाल एक बच्चे का होता है, उसे कब तक शांतिपूर्वक बैठाए रखा जा सकता है, यह संभव नहीं। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी, मन सदैव चलायमान रहता है। सबसे अच्छा मार्ग यही है के मन को भगवान के चरण कमल में लगा दिया जाए। मनोमय अर्पितम स्थिरम, यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्ध अवस्था है। समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीवन की उच्चतम सिद्धि अवस्था में ही होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा शीर्षक 25वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीलतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणानां सत्सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसाहं निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयार्पितम स्थिरम। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं, जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही है। परम सत्य की अनुभूति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अपना मन लगा के ही हो सकती है। ये कथन ज्ञानियों को पसंद नहीं है, ध्यानियों को भी पसंद नहीं, सिर्फ भक्तों को पसंद होता है। इतना नहीं, लेकिन इसमें ये अभ्यास की वृत्ति पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। मन को अभ्यासी बनाना, मन मनाए ढंग से जिनको अभ्यास नहीं है तो वो कैसे भगवत प्राप्ति या भवबंधन से छुटकारा पा सकता है। कपिल देव की ये भक्ति के बारे में जो सूचना है तो वो सर्वप्रथम देवहूति सारी चीज समझ सकती है। कर्दम मुनि बड़े तपस्वी थे, तप करना उसके लिए देवहूति स्वयं के लिए कोई संभवित नहीं था। वो एक तरफ कहती है कि मैं स्त्री हूं इसलिए मुझमें ज्ञान नहीं, मैं कम अक्कल हूं, तो स्वयं वो ज्ञानी भी नहीं बन सकती। तो उसके उद्धार के लिए कपिल देव ने अपने माता और पिता कर्दम मुनि और देवहूति की प्रार्थना सुनकर अवतरित हुए हैं। उसके उपरांत देवहूति को ब्रह्मा जी के द्वारा सूचना मिली है कि तुम्हारा उद्धार का साधन तुम्हारा बेटा होगा, लेकिन जीवन का रहस्य जानने के लिए तुझे परीक्षा करनी चाहिए। तो देवहूति का सर्वप्रथम प्रश्न तो ये था कि आप भगवान हो लेकिन मेरे बेटे हो। मैं मान तो लिया क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे ब्रह्मा जी ने मुझे निर्देश किया था, तो उसके अनुसार मैं अभी आपको परीक्षा कर रही हूं। तो मान्यता या शुद्धा का जो विषय है तो वो पहले उसमें था, लेकिन उसके लिए पर्याप्त अभ्यास के लिए बिना प्रश्न पूछे तो कैसे हो सकता है। इसलिए देवहूति ने प्रश्न पूछे। अपनी बद्ध अवस्था वो देह में पड़ी है उसको पता है, उसको चरम लक्ष्य के बारे में भी पता है, लेकिन अभ्यास करने के लिए पूछने की आवश्यकता बनी रहे। बिना पूछे अभ्यास कैसे हो सकता है? यदि आप अभ्यासी हो तो बिना परीक्षा आप उत्तीर्ण कैसे हो पाओगे? क्या सही, हमने सही अभ्यास किया? तो देवहूति इसलिए प्रश्न पूछ रहे। उसके प्रश्नों में सर्वप्रथम दो बातें आती है। पहला यही प्रश्न था कि भगवान और आत्मा के संबंध में आप हमें बताइए, और एक स्त्री और पुरुष के संबंध में भी आप बताइए। एक संबंध मुक्ति के तत्पश्चात होता है, पहला संबंध वो भौतिक अवस्था में बद्ध जीवन बताता है स्त्री और पुरुष। कपिल देव बहुत चालाकी से उत्तर दे देते हैं। ये उत्तर इतना स्पष्ट है आप लोगों ने तो अभ्यास किया है क्योंकि उत्तर ये श्लोकों में आ जाता है। कपिल देव बहुत सामान्य भाषा में समझा देते हैं, बाद में धीरे धीरे गहराई में जाते हैं। जो भगवान तथा जीव से संबंधित है, जो जीवात्मा का चरम लाभ के लिए है, जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वो सर्वोच्च पद्धति जिसे योग कहते हैं उसे द्वारा ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाएगा, भगवान और जीव का संबंध और व्यवहार जो कुछ होता है वो, और इस भौतिक दुनिया में आकर स्त्री पुरुष का संबंध के बारे में जो तू जाना चाहती है, और ऐसी अवस्था को समझकर उसमें यदि छूटना चाहती है तो ये उत्तर है कि जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रबुद्धता के तीन गुणों द्वारा आकृष्ट होती है वो बद्ध जीवन कहलाती है। जीवात्मा भौतिक प्रकृति में तीन गुणों द्वारा मोहित होकर शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी, मन संबंधी जो कुछ काम कर रहा है वो बद्ध अवस्था का है, किंतु जब वही चेतना भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चेतना तो वही रहेगी लेकिन हम किसके प्रभाव में हैं, भौतिक तीन गुणों के प्रभाव में हैं या भगवान के आध्यात्मिक गुणों के प्रभाव में? तो जब भौतिक प्रभाव में होता है तो वह मनुष्य मैं तथा मेरा से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध होता है। जिस विशुद्धावस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को पार कर जाता है, यानी कि मन एव ही मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्षाय। कपिल देव मन को मुख्य गुनेगार बनाते हैं, ये दिस इज द कल्प्रिट, क्योंकि मन की आसक्ति भौतिक अवस्था के तीन गुणों पर है या आध्यात्मिक तीन गुणों की अवस्था पर। भगवद गीता में भी भगवान मन को ही ज्यादा केंद्रित करना चाहते हैं। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे शिष्य सत्यम थे प्रति जानी प्रियो से, तो मेरे मन वाला तेरे मन वाला तू मत, तू मेरे मन वाला, यानी कि तेरे मन में मैं समा जाऊं ऐसा तो कुछ कर। मद भक्त मेरी भक्ति का मद्याजी मुझे पूजा कर, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार, मेरे मन वाला हो। भौतिक तीन गुणों में चाहे देवताओं की उपासना करने वाले भी इन तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, इसलिए वो भवमुक्ति का साधन नहीं कर पाते, क्योंकि देवताओं इन तीन गुणों से छूटे नहीं। तो मन को इन तीनों गुणों से छोड़ने के लिए भक्ति का विषय है के महत्ता बताते हुए कहते हैं कि मन इंद्रियों से जो ग्रहित संवेदना है उसका संग्रह स्थान है, इसलिए संग्रह करना आसक्ति करना। तो तीन गुणों के प्रभाव में अपनी इंद्रियां यदि बनी रहती है तो मन स्वाभाविक रूप से भौतिक आसक्ति बनाए बैठता है, लेकिन इस आसक्ति से छूटने के लिए भगवान के विषय उतरना चाहिए। भक्ति की व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु ने रूप गोस्वामी ने किया, सर्वोपाधिर विमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्तिरिच्छति। ऋषि यानी इंद्रिया, इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं। यदि ये इंद्रियां इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगी तो वो कैसे भक्ति हो सकती है। यानी कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, जिसके द्वारा ये सेवा द्वारा जो जो भौतिकता भी भगवान की सेवा में यदि लग जाती है तो मन तो कम से कम भगवान पर आसक्त बना रहेगा। यह सेवा भगवान के साथ यदि जुड़ावा नहीं करती तो योग की पद्धति भी नहीं बन सकती। इसलिए भगवान की सेवा में अपनी तन मन ये दो, धन तो पता नहीं ये लोगों ने धन क्यों जोड़ दिया है, भगवान यदि धन नहीं है तो तन और मन तो दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन तन और मन बहुत आवश्यक है, धन की आवश्यकता है। जिसने तन और मन लगा दिए हैं यानी कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है तो अवश्य मन भी लगेगा। मन को नियंत्रित करने के तन को उपयोग करना, तन इसीलिए दिया है नियंत्रण के लिए, न तो इंद्रिय भोग के लिए। जो तन को इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करता है उसको भगवान के प्रति जो एकाग्र बुद्धि होती है वो कभी पैदा नहीं होती। भोगेश्वरी प्रसक्ता अहम दया अप्रतचेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आत्मा के मूल व्यवसाय पर यदि आना है तो इंद्रियों को भोग और ऐश्वर्य में मत लगाओ। जो भोग और ऐश्वर्य के पीछे अपने तन को लगाता है तो मन भी ऐसा लपटा रहेगा कि वो छूट नहीं पाएगा। भव बंधन के अच्छे बुरे दोनों परिणाम को वो आत्मा के पास भोगना चाहता है। ये जबरदस्ती से आत्मा समझती है कि मुझे दुख है मुझे सुख है, लेकिन वो बंधनों का कारण बनता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने को ही तो भक्ति कहते हैं। भक्ति की व्याख्या ये है कि ऋषिकेनम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषि यानी इंद्रिया, गो यानी इंद्रिया, गैया भगवान की प्रति के लिए चरती है। भगवान की प्रति के लिए यदि गौ पालन करे तो ये गैया अपने शरीर के क्षेत्र में यानी खेत में इंद्रियां भी गैया जैसी है, वो भी अपने अपने विषयों में चरती है, लेकिन भगवान की प्रति के लिए ये गैया ने स्वरूप लिया था, सही ना। सारे ऋषि मुनि जीवात्मा इत्यादि जो भगवान के साथ लीला करने आए वो भगवान की प्रति के लिए गैया का स्थान ले रहे हैं, बछेरे के लिए स्थान दे रहे हैं, पेड़ पौधे का भी स्थान दे रहे हैं। इतने असंख्य जीव जो मुक्त जीव हैं भगवान के नित्य परिकर हैं वो थोड़े ही थोड़े हैं। त्रिपाद विभूति में तो तीन गुने ज्यादा है, हम ही जेल खाने में इतने छोटे हैं और इतनी कम मात्रा में एक पाद विभूति। तब भगवान जब आते हैं तो इन लोगों करोड़ों की संख्या में आएंगे, लेकिन भगवान को आते हुए इतने सारे पैदा होते हुए बर्थ रेट कितना बढ़ जाता है, तो कोई सोचता है कि हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया? ना ना, ये तो भगवान की प्रीति के लिए जीने के लिए आए हैं और अपना अपना कार्य संभालेंगे। तो गो यानी इंद्रियां, इतनी गैया है सारी भगवान की प्रीति के लिए जी रहे, इसलिए अध्यात्म में और भौतिक संसार में यदि वर्णाश्रम धर्म में कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम अथवा यू देखे तो नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय, गैया और ब्राह्मण के हित अपने इस कौन में ये निष्कर्ष निकलता है, यदि गौ पालन नहीं करेंगे तो ब्राह्मण कोई बनेगा ही। पहले गैया का पालन करते ही ब्राह्मण बने रहे, बिना गैया पालन कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये निष्कर्ष। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय, गैया और ब्राह्मण दोनों का हित। तो ये गैया अपने ही शरीर रूपी क्षेत्र में इंद्रियों के बनकर जो चल रही है, अपने अपने विषयों में वो जीती रही है, लेकिन ये तीन गुणों के विषय में क्यों चले? दी गई है भगवान की सेवा के लिए, हम तो सामान्य रूप से देखते हैं कि ये देखो ना ये कृष्ण भगवान तो काउबॉय है, गैया का पालन करता है, पता नहीं इसने क्यों ये व्यवसाय ले लिया है। भगवान का कर्तव्य गौ पालन का पता है नहीं, गौ पालन तो बहाना है, लेकिन ये गैया भगवान की प्रति के लिए लीला में शामिल हो रही है। इंद्रियां भगवान की प्रति के लिए उपयोग करना चाहिए। ऋषिकेश यानी भगवान इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों की सेवा इंद्रियों के स्वामी की प्रीति के लिए होती है। तो कपिल देव बता रहे हैं कि यदि भौतिक आसक्ति से छूटना है तो अपनी ही इंद्रियों को भगवान की तीव्र भक्ति में लगाना है, और मेरी इच्छा का क्या होगा, मैंने तो इतने अनादिकाल से इच्छा लेकर ये जन्म में आया हूं, ये कर रहा हूं, यदि भगवान का भक्त बन जाऊंगा तो मेरी इच्छा को क्या होगा? लोग घबराते हैं कि मैं भगत बन जाऊं तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं, आसक्ति छोड़ने को कहा, वस्तु छोड़ने को नहीं कहा। आसक्ति गहरी मन में होती है, वस्तु तो बाहर ही होती है, पदार्थ के रूप में वस्तु बाहर ही रहती है, इनको छोड़ो मत, जो छोड़ना है नहीं छोड़ते, और झूठा त्याग बताते हैं तो। इसीलिए गोस्वामी भक्ति की व्याख्या में अनासक्तस्य विषयान् यथा अर्हम् उपयुञ्जत निर्बन्धे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। अनासक्त भाव जो पैदा होता है परिणाम रूप अपने इंद्रियों के विषय में जब आती है, आकर्षण पाती है, तो ये भौतिक तीन गुणों के आकर्षण में आकर वो भवबंधन में पड़ती है, जबकि यही आकर्षण बना रहे लेकिन भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाए, तब
वो भगवन कराती है, मुक्त कराती है। तो अनाशक्तस्य विषयान, सारे विषयों पर अनाशक्त भाव, यथा अर्हम उपयुंजता, भगवान की प्रति यथा जिस हेतु के लिए हमें इनका उपयुंजत इनके साथ योग कराना है, जुड़ाना। कैसे? निर्बंधे कृष्ण संबंधे, मेरे लिए बंधन में नहीं लेकिन कृष्ण के संबंध में। बंधन और संबंध दोनों में बद्धता है, भौतिक बंधन, लेकिन जो संबंध होता है सम यानी दो या सब के साथ बंधन, तो संबंध के। लेकिन संबंध ज्ञान वास्तव में यदि भगवान के साथ होता है, भगवान के साथ का बंधन मिलो, तो निर्बंधे मेरी मुक्ति के लिए कृष्ण संबंधे में यदि ये इंद्रियों को उपयोग करता हूं तो युक्त वैराग्य, ये वैराग्य भगवान के साथ जुड़ावा करने वाला है। यदि कोई ये समझता है कि प्रापंच की तया बुद्धिया, भौतिक बुद्धि को प्रापंच की बुद्धि कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के प्रलोभन में जो जो तत्व अपनी इंद्रियों के संसर्ग में आते हैं उसके द्वारा हमें जो बुद्धि प्राप्त होती है उसे प्रापंच की बुद्धि कहते हैं। प्रपंच प्रपंची है यानी कि काफी खटपटी है, लेकिन खटपट कहां करता कि ये भौतिक अवस्था में करता। तो प्रापंच की तया बुद्धिया हरि वस्तु न संबंधी, भगवान के संबंध में। मुमुक्षु हि परित्यागो, जो छूटने के लिए कोशिश करता है लेकिन ये परित्याग कर देता है। परित्याग में अपने से उसको बिल्कुल हटा देता है वस्तु तक, तो वैराग्य फल्गु कथ्यते, उसका वैराग्य फल्गु यानी प्रिटेंशियस, फल्गु यानी बेकार, झूठा साबित होता है। भगवान की शक्ति से सब कुछ पैदा हुआ है, भौतिक और आध्यात्मिक, तो भगवान के संबंध में दोनों चीज है। हम भगवान को हटाकर अपने लिए उपयोग करते हैं तो हम ही फंसेंगे। जब भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित करके इनके साथ मन लगाने में यदि करते हैं तो भक्ति बन जाती है। कितना सरल उपाय बताए। तो इस तरह कपिल देव देवहूति को भौतिक चीजों होते हुए इनके साथ इंडिफरेंस यानी अलगाव, अनाशक्त, क्या इंडिफरेंस को क्या कहते हैं?
उदासीन।
अरे उदासीन तो दुखी भी उदासीन हो जाता है वो तो अटैचमेंट के लिए होता है। उदासीन, उदास होना डिटेचमेंट नहीं बताता, उपेक्षा, तिरस्कार नहीं करना, निरपेक्ष, निरपेक्षता। निरपेक्ष यानी कि इस पर अपेक्षा नहीं होता है लेकिन हम उस पर आधार नहीं रखेंगे, निरपेक्षता। निरपेक्षता हमें परम सत्य की नजदीक ले जाती है। लेकिन सापेक्षता, रिलेटिविटी, हमें बंधन में डालती। जो कुछ भौतिक अवस्था में पैदा हुआ है भगवान के संबंध में है, भगवान से अलग कैसे हो सकती है इनकी शक्ति। लेकिन भगवान स्वयं निरपेक्ष है और उसने ये पैदा किया है, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं इसमें नहीं। चातुर्वर्ण्यम महासुष्ट गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपनी विधि अकर्तारम, मैं अकर्ता हूं। जो भौतिक अवस्था में आसक्त हो जाता है तो अपने को कर्ता मानने लगता है, यह आसक्ति का है, मैंने किया है। तो निरपेक्षता वाला भाव रखने के लिए वो निमित्त कहेगा आदमी को, कर्ता नहीं करेगा। करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो तो कहने का मतलब है कि भक्ति में ये स्थिति की स्पष्टता कपिलदेव पहले से ही कर देते हैं। ये बुनियाद है योग की। जब तक हम अनासक्त भाव से निरपेक्षता नहीं लाते, इंडिफरेंस, हम भेद नहीं करते हैं, ये ठीक है ये ठीक है, नहीं, भौतिक अवस्था में सब बेकार, द्वैते भद्र अभद्र सकली समान, यही भावो यही मन सब मनोधर्म। क्योंकि मन भौतिक अवस्था में यदि पड़ा है तो ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन ये मनोधर्म कहलाता। मन जितना चंचल है वो धर्म भी चंचल, यानी कि आसक्ति वाला कोई भी भौतिक आसक्ति वाला कोई भी प्रयोजन सफल नहीं होता। तो भक्त पहले से ही अनासक्त भाव इंडिफरेंस भवबंधन काटने के लिए करता है। तो ये भक्ति के अभ्यास में अवश्य होना ही चाहिए। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए इतना अभ्यास करने के लिए प्रायोगिक रूप से हमें कपिलदेव बताते हैं कि मन से लेकर जिसे अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरण में लगाकर, लेकिन पांचे पांच इंद्रियों को कहां लगाए वो भी बता देते हैं। ये पांच इंद्रियां गैया है, इनको यहां तो प्लास्टिक इत्यादि खाती है, मर जाती, खाना नहीं मिलता तो कूड़ा कचरा भी चबा लेती है, लेकिन भौतिक आसक्ति के कारण पेट के कारण खा लेती है तो उसमें उसका कोई हित होता ही नहीं। इसी तरह इंद्रियों के विषय जहरी है, विषय विष बराबर कहलाते हैं। विष और विषय में क्या फर्क है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसोपम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवद्गीता में क्या कहते हैं? यदि हम विषय यानी कि खाने के विषय के लिए बात करो, तो यदि हम उपवास करके सिर्फ भूखे रहना चाहते हैं तो खाने के विषय के पीछे तो स्वाद पड़ा है, है ना। और मुझे चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी नहीं खानी, मुझे डायबिटीज है, दबा के यहाँ हम मार देते हैं, नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ। लेकिन हमें यदि हर टेस्ट मिला है कि उसे रसोवर्जन, ये रस को छोड़ने के लिए हमें उससे भी ज्यादा मधुर रस पाने की आवश्यकता होती, तभी तो छूटेगा। तो भौतिक शक्ति अपराशक्ति है, इसलिए भगवान बताते हैं अपरे मितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में परा, यह अपरा प्रकृति से भी दूसरी परा प्रकृति है, उसका नाम जीव है। जीव तू परा प्रकृति का होने के लिए तो तुझे परा प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, यह अपरा प्रकृति के सानिध्य में क्यों आता है? भगवान बता देते हैं तो परा प्रकृति का मेरा अंश है तो अपरा प्रकृति के में क्यों है? तुझे यहां पर जा रही यानी भौतिक आसक्ति से वो पागल होकर नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म जड़ेन्द्रिय प्रीतृणापनोती, जड़ इंद्रियों की प्रीति के लिए हम विकर्म करते रहते हैं, न साधु बनिए आत्मनोय, आत्मा के लिए ये अच्छा है ही नहीं। क्योंकि असत अपि क्लेशद आसदेह, ये देह असत काम चलाव है और क्लेशद है दुख देने वाला है। काम चलाओ दे भी यदि दुख देने वाला है तो उस पर आसक्ति के लिए प्रमत्त बनने की आवश्यकता क्या है? इसमें कोई अकलमंदी नहीं। जो अकलमंद नहीं है तो परापवश्य अबोध जातो जावन न जिज्ञास महात्म तत्व, इसका पराभव यानी कि डेड डिफीट, श्योर श्योर उसके डिफीट, ही विल लूज द बैटल फॉर द लाइफ। परापद से अबोध जातो जावन जिज्ञासम आत्मतत्व चावत क्रिया तावत मनोभी, जैसा गुणों का संग है वैसा ही उसका मन है, इसलिए कर्मात्मक है एवं शरीर ये कर्म उसके शरीर का बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि वो मन उसे वही कराता है। तो इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान के साथ योग करने का सीधा उपाय, सारी इंद्रियों को जो मन उस इंद्रियों का स्वामी, तो इंद्रिय नौकरों को लगाओगे ऐसे काम में तो मालिक भी लगेगा। तो पांच पांच इंद्रियों को अम्बरीश महाराज कैसे लगाते थे? उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया क्योंकि वहां आश्रय स्थान है, वहां स्वार्थ की बात नहीं, लेकिन वे भगवान की लीलाओं का कथन करते, वे भगवान पर चढ़े हुए पुष्प तथा तुलसी को सुनते, वे भगवान के मंदिर तक जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जीभ का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण सुनने में करते। इस प्रकार ये समस्त इंद्रियां को भगवान की सेवा में व्यस्त रखते हैं, तो मन कहां जाएगा? मेरा मन बहुत चंचल है, यानी कि यू आर नॉट प्रॉपरली एंगेज। जिसका मन चंचल रहता है इसका मतलब ये है कि उसको पर्याप्त रूप से वो सेवा में रुका नहीं है, भगवान की सेवा में रुका नहीं। तो भक्ति की ये बुनियाद कपिल देव बता देते हैं, क्योंकि ये परम सत्य जो निरपेक्ष है किसी पर अपेक्षा नहीं करता, तो निरपेक्षता इंडिफरेंस कहलाती है। इंडिफरेंस यानी कि ऐसा नहीं उदासीन व्यक्ति तो चलो मारो गोली, इसमें हमें रहना नहीं, इतना ही कर सकता है। लेकिन ये दोनों होते हुए जो उदासीन संप्रदाय है ना, तो ज्यादातर माओवादी आता है, क्योंकि परित्याग करेंगे चीजों का, खुद के लिए नहीं। इसीलिए वो झोपड़ी बनाकर सिर्फ ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान साक्षात यहां लीला कर रहे हैं। ये लीला में शामिल होने के लिए उसको कार्यरत रहना पड़ेगा, ऐसे झोपड़ी में बैठे से क्या फायदा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान धाम का वितरण दिया है, संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती सुन, उसमें देखो सारी इंद्रियां लग जाएगी भगवान की सेवा। नाम कीर्तन करो, नाचो कूदो, प्रसाद खाओ और प्रभुपाद जी के पुस्तक का वितरण करो। जा रहे दिखता रे कह कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु होना तारी देश, ये सबको चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दे दिया। भगवान के बारे में ही बात करो, भगवान के बारे में सेवा में आप जुड़ो, दूसरों को जुड़ाओ, क्योंकि अभी से ही मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति की राह देखनी नहीं पड़ेगी। मुक्ति के मार्ग पर यदि जो चल रहे हैं तो क्या मुक्ति का अवकार नहीं मिलता है लोगों को? इन्विटेशन सबको मिल गया है। इसलिए जो तात्कालिक फायदा लेना है तो भगवान की ये विशुद्ध भक्ति का आचरण करें। कपिल देव इस अध्याय में क्रमशः सर्वप्रथम मन को कारण बनाकर कैसे हमें इंद्रिय का उपयोग करना है ये ज्ञान दे देते हैं, इंडिफरेंस का ज्ञान इस अध्याय। लेकिन हमारी इंद्रियां वस्तुतः हजरा हजूर वास्तविक रूप से एंगेजमेंट करना चाहती है, मानसिक एंगेजमेंट नहीं है। तो ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन दूसरी इनकी सेवा विग्रह सेवा, भगवान की सेवा यानी विग्रह की सेवा पर जोर देते हैं। इनके स्वरूप पर सारा ध्यान केंद्रित करने के कहते हैं भगवान कपिल देव, कहते मेरे मूल स्वरूप पर ध्यान करो, मेरे मुखारविंद का दर्शन करते सारे पाप टल जाते हैं। और वो तुरंत पहुंच जाता है मेरे लिए सोच, यानी कि उसका मन भगवान के व्यक्तित्व में, भगवान की पर्सनालिटी में बना रहेगा। तो जो ज्ञानी लोग अनुभव नहीं करते, ध्यानी नहीं करते, भक्त सीधा तात्कालिक करता है। दर्शन करते हमें आसक्ति आती है, चलो दर्शन के लिए जाए, लेकिन हमेशा दर्शन करते रहे, ऐसा उपाय भक्ति में बताया गया है। प्रेमांजनश्रित भक्ति लोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंद। 24 घंटे जो भगवान का स्माइलिंग फेस देख रहा है, जो अचिंत्य गुण स्वरूपम अपनी बुद्धि से पूरे पूरा अभ्यास द्वारा वो भगवान की निरपेक्षता और परम सत्य की पहचान करता है, तो वो मार्गदर्शन माध्यम द्वारा अपने हृदय में ही वो भगवान का अवलोकन कर रहा है। ये भक्ति परम
सिद्धि है इस मनुष्य जीवन में, ये कह देते हैं। तो यानी कि विग्रह सेवा पर विस्तृत रूप से वो कहेंगे। विग्रह सेवा करते करते हमें परमात्मा का साक्षात्कार का लक्ष्य बता देते हैं। तब वो प्रेमांजन चरित्र भक्ति विलोचन दशा आएगी, बिना विग्रह सेवा नहीं आएगी। इसलिए दूसरी दीक्षा में विग्रह सेवा पर ज्यादा भार दिया जाता है, जोर दिया जाता है। हर गृहस्थ को अपने घर में विग्रह सेवा स्थापित करनी, तो धीरे धीरे उसमें विकास करके, यानी कि ये भगवान में चित्त मन अपनी अपनी भावना कॉन्शियसनेस बना। ये जो चेतना है, चेतना तो वही है लेकिन किसके संसर्ग में आती है, किस विषयों के संसर्ग में आती है, जो त्रिगुणात्मक है या त्रिगुणातीत है, सत्व रज तमोगुण से आकर्षित चेतना यदि आएगी तो भौतिक बंधन आएगा, यदि आध्यात्मिक चेतना जो भगवान की होती, भगवान पर लगेगी, वो सच्चिदानंद चेतना संपर्क में यदि अपनी चेतना आती है तब मुक्ति के बाद भक्ति मिलेगी। भौतिक अवस्था में अचित असत निरानंद अवस्था, असत यानी काम चलाओ तो ये झूठी साबित होती है। अचित स्वयं में जानकारी हमें इतनी प्राप्त नहीं होगी, मर्यादित होगी। एक खोपड़ी भी मर्यादित, सारा सारी सृष्टि भी मर्यादित है, एक चतुर्था उसकी है सारी सृष्टि जो बनी पैदा हुई है। अध्यात्म की सृष्टि को पैदा होने की आवश्यकता है क्योंकि होती है हमेशा, एक चौथाई सृष्टि पैदा होती है और इसमें बड़ी बड़ी ज्ञान, यानी कि छोटे दिमाग वाले इनको पहुंचना चाहते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं तो छोटे दिमाग वाले, बड़े दिमाग वाले नहीं है। बड़े दिमाग वाले तो भगवान के भक्त होते हैं, उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम, ये चरित्र बहुत उदार है। देवहूति एक प्रश्न बहुत महत्व का करती है, जानते सुनते करते भी यदि हमारी कोई प्रगति नहीं है भक्ति, तो सर्वप्रथम श्रद्धा का बल कहां से मिलेगा, उसको कैसे आगे व्यवस्थित रूप से बतानी चाहिए। तो जो सत्संग की महिमा बताइए, सताम प्रसंगा मम वीर संविद भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुकृष्ट। ये इतना महत्व का बताया उन्होंने कि जो अकेले अकेले अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में जुड़ना चाहता है तो उसका मन इतना विप्लव करेगा कि वो अकेला नहीं कर पाएगा। उस पर न तो देख रेख रहे ना कुछ है, इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पाद तैयार कल्पते, उस पर कोई सुपरविजन नहीं। जबकि सत्संग में सुपरविजन होता है और सुपरविजन में बल है, भगवान की अध्यक्षता में यदि भौतिक प्रकृति काम करती है तो क्या आध्यात्मिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम नहीं करती। वो भगवान की इच्छा जानकर ही स्वयं कर लेते, जब को भगवान को ये भौतिक सृष्टि को आज्ञा देनी पड़ती है
यस्या गया प्रभृति संवृत काल चक्र, आज्ञा देनी पड़ती है, ऑर्डर दिया है कृष्ण भगवान, ऐसे घुमा करो चलो। खबरदार जो किसी ने अपनी भ्रमण कक्षा से बाहर गए तो इतने, यानी कि भगवान कहते मेरे भय से वायु भी बैठा है, मेरे भय से ये दिन रात होते हैं, मेरे भय से, यानी कि उन्होंने आज्ञा दी है। आज्ञा का यदि कोई पालन नहीं करेगा तो वो भयभीत होगा, क्योंकि भय भगवान का प्रतिनिधि बनकर उनको सताएगा। कौन होता है यज्ञा ब्रह्म की संप्रदाय, जबकि साधु पुरुष, साधु के लक्षण इनके लक्षण दिए गए हैं, साधु पुरुष भय रहित होता है क्योंकि भगवान के आज्ञा में है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। सही, तो एक बात विभूति भगवान की आज्ञा मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरं हेतु नानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो ये भौतिक प्रकृति चक्रवत क्यों घूमते, सुख दुख क्यों आते हैं, दिन रात क्यों आती, ये सीजन क्यों आती रहती है, आज्ञा है, इट्स एन ऑर्डर। तो भौतिक प्रकृति भगवान के कोई भी कार्य का उल्लंघन नहीं करती, तो ये भौतिक प्रकृति की आज्ञा जब भौतिक आसक्ति वाले को जबरदस्त सताती रहती है तो क्या वो अपने आप को वो अनंत के करता है ऐसा समझेगा? ये भौतिक दुनिया, प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक दुनिया में जो अपने आप को सुखी समझता है वो पागल है, पागलों की दुनिया में, पागलों को तो अपने आप को सुखी मानते हैं, लेकिन उसने ये पता नहीं कि किनके भक्ति में पागल होने वाले भी तो हैं जो महासुखी होते हैं। माया डंडा मारे फिर भी वो अपने आप को सुखी समझता तो गधा नहीं तो कौन, डंडा मारे फिर भी अपने आप को सुखी मानता। तो कपिल देव ने इस सत्संग की महिमा कितनी बड़ी की, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविद भवंति रद कर्ण रसायन कथा। यदि ये अध्यात्म की ताकत का अनुभव करना है, वो मेरी ताकत का अनुभव, मेरी शक्ति कैसे है आप उसका अभ्यास करो। तो सताम प्रसंगा, ये सत्संग प्रसंग में सत यानी सनातन अवस्था वाले जीव की जो आध्यात्मिक अवस्था है उसके लिए ही संग करना सत्संग कहलाता है। ये परम सत्य है इसलिए उसे सत्य का संग कहते हैं। तो सताम यानी अरे साधु संग सताम है ना, कि इस ढंग से जो पवित्र हुए हैं ऐसे साधुओं का संग, जो आत्मा की ये दशा निराली बन जाती है। ये निराली शब्द निरपेक्षता का है, निरपेक्ष इंडिफरेंस को कहते हैं निराला। भगवान की दुनिया तो निराली, अरे साधुओं की तो दुनिया निराली ही होती है, तो इसमें क्या अर्थ समझोगे? इंडिफरेंस मीन्स निराल, उदासीन नहीं। मायावादी उदासीन होते हैं तो क्या करें, मैं फेल हुआ चलो मारो गोली, भगवान है नहीं किसको क्या मरवा, मायावादी ऐसे फंस और दुनिया को गुमराह करते हैं। तो ये कपिल देव की ये भक्ति की जो बुनियादी समझ है उसका अभ्यास करने के लिए हम सबको तत्पर होना चाहिए। तो ये इस अध्याय का सारांश यहां में अंतिम श्लोक में मिलता है कि अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं, जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही है। चलो प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है?
भगवान को सरलता से कैसे पाया जा सकता है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पांचे इंद्रियों को जोड़ दो, आपकी माला कहाँ है? पांचे इंद्रियों को जोड़ दो, माला नहीं है तो हवा में है। माला साक्षात होती है, स्पर्श इंद्रियां काम करेगी, आंखें काम करेगी, कने काम करेगा, जीभ भी काम करेगी, नाक भी काम करेगा, तुलसी की माला होगी तो। अरे बोलो, अम्बरीश महाराज जैसे तो सज्जन है, माला ले लो फटाफट शीघ्र ही एक्सप्रेस।